नामचा श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंध अध्याय 24 श्लोक संख्या 62। यस्मिन् सत्तकर्ण पीयुषे यशः तीर्थवरे सकृत् श्रोतांजलि श्रोतांजलिर्पस्पृश्य श्रोतांजलिरुप उपस्पृश्य धुनुते कर्मवासना धुनुते कर्मवासना यस्मिन् सत्कर्ण पीयुषे यस्मिन् सत्कर्ण पीयुषे यशः तीर्थवरे सकृत् श्रोतांजलि उपस्पृश्य धूनुते धूनुते कर्मवासनम्। माताजी यस्मिन् धरा पर कृष्ण के दिव्य कार्य कलापों के इतिहास में सत्कर्ण पीयुषे जो दिव्य एवं शुद्ध कानों की आवश्यकताओं को पूरा करता है यश तीर्थवरे भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करके पवित्र स्थानों में रहते हुए सकृतः एक बार भी या तुरंत। श्रुतांजलि दिव्य संदेश का श्रवण करते हुए उपस्पृश्य स्पर्श करके जिस तरह गंगा जल को आचमन करके एक्चुअली धुनते नष्ट कर देता है कर्म वासना सकाम कर्मों की प्रबल इच्छा को। अनुवाद तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के जस को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की व्यवस्था से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, जब भक्तगण भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं तो उन्हें तुरंत ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके पश्चात वे भौतिकवादी कार्यकलापों में तनिक भी रुचि नहीं रखते। इस तरह उन्हें भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाती है। लगभग हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिकवादी कार्यकलापों में लगा रहता है, जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। किंतु भक्त मात्र भगवत गीता का संदेश सुनकर तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं का स्वाद लेकर इतना शुद्ध बन जाता है कि उसे भौतिकवादी कार्यकलापों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। इस समय पश्चिमी देशों में भक्तगण कृष्ण भावनामृत द्वारा आकृष्ट हो रहे हैं और भौतिकवादी कार्यकलापों से विकृष्ट हो रहे हैं, इसलिए लोग इस आंदोलन का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु यूरोप तथा अमेरिका में भक्तों के कार्यकलापों पर कृत्रिम रोक लगाकर वे इस आंदोलन को रोक नहीं सकते। यहाँ पर श्रोतांजलि उपस्पृश्य शब्द बताते हैं कि भगवान के दिव्य कलापों के श्रवण मात्र से भक्तगण इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें संसारिक कार्यकलापों का दूषण व्याप्ता नहीं। अन्याभिलाषता शून्यम, आत्मा के लिए भौतिकवादी कार्यकलाप व्यर्थ हैं, अतएव भक्तगण ऐसे कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। भक्तगण मुक्ति में स्थित रहते हैं, ब्रह्मभुवाय कल्पते, अतएव उन्हें उनके भौतिक घरों तथा कार्यों में फिर से नहीं बुलाया जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यह अध्याय जो है ए उपसंहारिक अध्याय है नौम स्कंद का। नौम स्कंद जो है इसे ईशानु कथा कहा गया है। इस और अनु, इस मतलब भगवान और अनु मतलब उनके भक्त, भगवान और उनके भक्तों के कथाओं का वर्णन किया गया है। अब विष्णु वंश का वर्णन करते हुए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण बलराम का वर्णन किए, तदुपरांत उन्होंने कहा कि भगवान के आने का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों इस धराधाम पर आते हैं। तो उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो बृहश्च पाप मनः तदा तु भगवान ईश आत्मानं सृजते हरि। ठीक वैसे ही भगवान बताए, यहाँ पर बताया गया है जैसे भगवद्गीता में बताया गया है, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सुजामि हम। प्रश्न उठता है कि भगवान को आने का क्या यही प्रयोजन है? धर्म की ग्लानी जब होती है तो धर्म का स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, यही सब प्रयोजन भगवान के आने का। तो श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 61 और 62 में इसका खुलासा करते हैं कि हां वो एक कारण है, लेकिन वह बाह्य कारण है, वो आंतरिक कारण नहीं है। असली जो कारण है उस बात को बतलाया गया है इन दो श्लोकों में। श्लोक संख्या 61 में कहते हैं, कलौ जनिष्यमाणानाम दुख शोक तम अनुदनम, तमानुदनम अनुग्रहाय भक्तानाम पुण्यम व्यतनोदीयज सपुण्य व्यतनोदीयत। तो यहां पर दो कारण यहां पर बताए हैं, कलौ जनिष्यमाणानाम भक्तानाम अनुग्रहाय दुख शोक तमानुदम सुपुण्य यश व्यथनोत। क्या कारण है? कलौ जनिष्यमाणानाम, देखिए द्वापर युग की लीला है, अब कलयुग के लिए करें। कलौ जनुष्यमाणानाम, कलयुग में जो मनुष्य होंगे हैं, जनिष्यमाणानाम जो जन्म लेंगे कलयुग में, जन्म लेंगे वो कैसे होंगे? यू हैव टू गो वर्स नंबर 61 फर्स्ट। कैसे होंगे? तो कहते हैं दुख शोक तम नुदनम, नुदन, नुद मतलब आच्छादित, कवर्ड। कलयुग के लोग कैसे होंगे? दुख शोक और अज्ञानता से आच्छादित होंगे, एक कलयुग के लोगों का गुण है। तो हम लोग उसी में से हैं, हम लोग दुख से आच्छादित हैं। ये संसारी दुख है, सब जगह दुख ही दुख है, शोक लगा हुआ है और अज्ञानता है। तो दुख शोक तम नुदम, नुदम मतलब आच्छादित, वो ढके हुए हैं इनसे। तो उन लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान आए। तो उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? असुरों का विनाश कर करके, जैसे माता पृथ्वी को तकलीफ हुआ था तो भगवान के पास आई थी, तो असुरों का विनाश कर करके, धर्म का स्थापना कर करके, इत्यादि इत्यादि। कि धर्म का स्थापना करेंगे भगवान, धर्म को भ्रष्ट करने वाले ये असुरगण हैं, तो असुर लोग मार दिए जाएंगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी। जब धर्म का लोग पालन करेंगे तो अपने आप दुख शोक और जो अंधकार है वो नष्ट, अज्ञानता है नष्ट हो जाएगा। जब ज्ञान रहेगा तो अज्ञान वहां पर नहीं रहेगा। सब लोग अपने धर्म का पालन करें, यथावत प्रिस्क्राइब ड्यूटी को पालन करें, तब ये तीनों नहीं रहेंगे। अनुग्रहाय भक्तानाम, ये भगवान का अनुग्रह है। यहां पर स्पेशल बात कहते हैं भक्तानाम, भक्तानाम यस्मिन सताम, हां सॉरी, संकल्प मात्रेण भूभार हरणम समर्थम श्यापी कर्म करणम जसो विस्तार द्वारा भक्तानाम अनुग्रहार्थम इति आह कलौ इति द्वाभ्यम। दुख शोक, दुख शोकतम आंशी
अनुदित इति तथा तदवशो व्यतनोत। तो यहाँ पर दो बात, एक तो है भूभारण करना, जिसे भूभार हरण करना, जब माता पृथ्वी पर अत्याचार से, असुरों के अत्याचार से दुख हुआ था तो वे लोग ब्रह्मा जी के साथ में क्षीर सागर पर गए, आप लोग कथा सुने, तो भूभारण हरण करने के लिए। यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं संकल्प मात्र से भगवान भूभार हरण कर सकते हैं। असुर लोग में क्या दम है, कोई दम है? पुतना इतनी महान थी, भगवान केवल अपने अधर से उसका अस्तन पान करते हुए उसका प्राण पान कर गए। इनमें दम ही क्या है इन असुरों में? तो ये पृथ्वी माता को जो ये असुर लोग दूषित कर रहे हैं, भगवान को उनके लिए आने की जरूरत नहीं है। अभी आजकल इतना बाढ़ आ रहा है, कितने असुर मर जाएंगे उस बाढ़ में, आंधी तूफान जोर से आ जाएगा, मर जाएंगे। इनमें दम ही कहाँ है? तो भूभारण संकल्प मात्रेण भूभार हरणम समर्थम, संकल्प मात्र से भगवान भूभार हरण कर सकते हैं। तो फिर आने का क्या कारण है? कर्म करणम, भगवान आते हैं स्यापि, इसके बावजूद भी वे कर सकते हैं, फिर भी आते हैं। क्यों? कर्म करणम जसो विस्तारम, कर्म कर करके जस का विस्तार करते हैं। किस लिए? भक्ता अनुग्रहार्थम इति, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। ये भगवान जितना भी लीला किए हैं ये भक्तों पर उनका अनुग्रह है, प्राणियों पर भगवान का ये अनुग्रह है। भगवान का विभिन्न प्रकार का लीला जो है वो अनुग्रह है। अनुग्रह कई एक प्रकार का होता है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो, उसको भोजन दे दीजिए ना, तो उस भूखे के ऊपर यह अनुग्रह हुआ। कोई बहुत पढ़ाई करना चाहता है, पैसा उसके पास नहीं है, कोई थोड़ा हेल्प कर देता है तो अनुग्रह कर वो हुआ। अनुग्रह का इंग्लिश क्या होगा? मर्सी, अंग्रेजी में शब्द नहीं है, मर्सी नहीं होगा, काइंडनेस, हाँ। जिसमें देखो, एक तो होता है काइंडनेस, जैसे कोई कोई व्यक्ति मांग रहा है कुछ और उसकी परिस्थिति बड़ी दयनीय है, वह देख करके हमें दया उत्पन्न होता है और तो हम उसको देते हैं, तो ये अनुग्रह नहीं हुआ। ये तो हम अपने दुख को मिटिगेट करने के लिए, हम दुखी थे तो अपने को ठीक करने के लिए उसको कुछ दे दिए, अब शांति हो गई, तो ये अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह का मतलब तो निरपेक्ष, या कोई अपेक्षा ना हो, कर्तव्य समझते हुए, तो वह अनुग्रह हुआ। अगेन धर्म का पालन ही असली अनुग्रह है। एनीवे, तो ये तो सामान्य अनुग्रह हुआ, लेकिन भक्तों पर अनुग्रह, काउजलेस मर्सी, हाँ है क्या? नहीं, ठीक है, काउजलेस मर्सी कुछ हद तक आ रहा है। एनीवे, अनुग्रह का मतलब बिना किसी प्रकार के अपेक्षा का, बस वही समझ लो, उसे अनुग्रह कहते हैं। भगवान किसी अपेक्षा, जैसे बाप माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो इस प्रकार का अनुग्रह। एनीवे, अब ऐसे ही अनुग्रह को का वर्णन भागवतम के दशम स्कंद के 33वें अध्याय में किया गया है। ये अनुग्रह शब्द पर मैं ही बात कर रहा हूं, और ये भी यहां पर आया हुआ है अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर विशेष रूप से अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं। जब भगवान रासलीला किए तो रासलीला तो आप लोग जानते ही हो, जब भगवान शरद पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि में बांसुरी बजाए तो सब गोपियां विवाहित थे वो भी, अविवाहित थी वो भी, सब घर द्वार छोड़ करके और रास मंडप में पधारी, रास हुआ। परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे तो जब यह कथा सुने तो वे सोचे कि जो सामान्य लोग हैं इसको उल्टा समझेंगे, आज लोग उल्टा समझते भी हैं, तो इसीलिए सामान्य लोगों के समान ही परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। कहते हैं, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान भगवान अनुसेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता अभिरक्षिता प्रतीप आचरत ब्रह्मन परदारा अभिसंस्पृशन। कहते भगवान यहां पर आते हैं, क्यों आते हैं? संस्थापनार्थाय धर्मस्य, धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान यहां पर आते हैं और उसका प्रसार यानी प्रचार करते हैं, स्थापना करते हैं, रक्षा करते हैं और प्रचार करते हैं। अवतीर्णो ही भगवान अंशेना, वे भगवान ही मतलब निश्चय ही आते हैं अपने अंश बलराम के साथ में धर्म का स्थापना करने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो सुखदेव को, हाँ बिल्कुल बात सही है, आप ठीक कह रहे हो। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं कि वे भगवान जो धर्म का स्थापना करने आते हैं, धर्म के प्रणेता हैं, धर्म के रक्षक हैं, स वे भगवान कथन धर्म से तुम नाम वक्ता कर्ताम अभिरक्षिता, जो भगवान धर्म के प्रणेता हैं, वक्ता हैं, उसके रक्षा करने वाले हैं, तो इसके विपरीत आचरण क्यों करते हैं? प्रतीपम आचरत ब्रह्मन स कथम प्रतीपम आचरत ब्रह्मन, वे भगवान फिर विपरीत आचरण कैसे करते हैं? तो मानो सुखदेव जी पूछते हैं विपरीत आचरण क्या भगवान कर दिए? तो कहते हैं लो अब इसमें क्या करना है, कहते हैं परदारा अभिम अभिम अभिस्पर्शनम, दूसरे के पत्नियों का स्पर्श करना, स्पर्श मात्र भी करना, दूसरे की पत्नियों का, दूसरे लड़की का स्पर्श करना। भगवान रास किए थे कि स्पर्श मात्र भी क्या यह धर्म नहीं है? यही प्रश्न था। आप्त कामो यदुपति, ये यदुपति तो आप्त काम है, अपने आप में संतुष्ट हैं। कृतवान वै जुगुप्सितम, फिर उन्होंने ऐसा निंदनीय काम क्यों किया? बड़ा अच्छा चार्जिंग कर रहे हैं परीक्षित महाराज हम लोगों के बिहाफ में। कहते हैं कृतवान वै जुगुप्सितम, किम अभिप्राय, क्या कारण था? जब आप काम है क्या कोई कमी रह गई थी? किम ऐसा वे किए? एतम न संशयम संशयम छिंदति सुब्रत, हे सत्यनिष्ठ सुखदेव गोस्वामी, हम लोगों में यह संशय, न संशयम, हम में यह संशय है, कृपा करके हमारे संशय को खत्म कीजिए, नष्ट कीजिए, छिन्न छिंदति छिन्न कीजिए, खत्म कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूरा समझाए और समझाने के क्रम में अंत में कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृशीं कृणा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। 37 कहते अनुग्रहाय भूतानां, ओरिजिनल श्रीपाद जी गोस्वामी यहां पर भक्ता नाम कहे हैं, अनुग्रहाय भूत भक्ता नाम, लेकिन भक्त सब है इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहां पर भूता नाम कहे हैं। अनुग्रहाय भूता नाम, सब लोगों का अधिकार है कृष्ण का भक्त बनने का, हरि कथा सुनने का अधिकार सब लोगों को है, केवल भक्तों को ही नहीं है। ऐसे भक्तों का बपौती है, वो सुन सकते हैं, उनको ज्यादा प्रिफरेंस है, लेकिन देखिए आज के श्लोक में अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्य वेतनोत सह, यहां पर भक्ता नाम सुखदेव गोस्वामी किए हैं। अब दोनों में अंतर है, वो अंतर को बता रहा हूं कि यहां पर भगवान के आने का प्रयोजन था। भगवान आए, क्यों आए, तो कहते हैं कलयुग में जो लोग जन्म लेंगे उन लोगों पर जो अत्याचार, जो अज्ञानता है उसको नष्ट करने के लिए और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। यहां पर अवतार का वर्णन है और यहां पर भगवान के लीला का वर्णन है, यही अंतर है। जो लीला है वो सबके लिए, सबका अधिकार है सुनने का, भगवान का लीला, और वह लीला क्या काम करता है, जय श्री गौनिताय की जय। कहते हैं अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहं आश्रितः, भगवान मनुष्य का देह ग्रहण करते हैं, मनुष्य का देह ग्रहण। भगवान का कितना अच्छा ये दया है, भगवान कितने दयालु हैं कि हम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान एक मनुष्य का देह धारण करते हैं। लेकिन मनुष्य का देह धारण करने के बाद भी भगवान का देह हम लोगों के समान नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं वही भगवान को मनुष्य मानते हैं, इवेन भगवान मनुष्य का देह धारण किए तो भी अवजानन्ति माम मुड्ढा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूं, मानुषिम देह आश्रितम, यहां पर देह आश्रितम या आश्रितम दोनों, आश्रय लेता हूं मनुष्य देह का, तो मूढ़ लोग जो हैं अवजानंती, जो नहीं जानते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भाव जनांतो, जो परम भाव भी जानते हैं कि मैं वही परमेश्वर हूं, कोई अंतर नहीं है। एक बार डॉक्टर पटेल और प्रभुपाद जी से आर्गुमेंट हो रहा था। डॉक्टर पटेल ने कहा कि प्रभुपाद जी भगवान भी अपना शरीर त्यागे थे गुजरात में, राइट, शरीर भगवान त्यागे थे। प्रभुपाद उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान का जो शरीर चिन्मय शरीर है, और डॉक्टर पटेल काहे को मानने जाए, वो कहे नहीं 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 हम लोगों के ही समान का भी शरीर था, स्पष्ट भागवतम में वर्णन किया गया है मानुषम देह आस्थितम भगवत गीता में बताया गया है कि मानुषम देह आश्रितम, मनुष्य का देह धारण किए तो हम लोगों के समान हाड़ मांस का होगा शरीर। प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास किए, डॉक्टर पटेल नहीं समझ रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि मान लो एक टेलर है, टेलर सबके लिए कुर्ता बना रहा है, एक अपने लिए बना ले तो उसमें कमी गड़बड़ी क्या हो गया, सबके लिए बना रहा है अपने लिए बना तो पाप क्या हो गया, तो भगवान सबके लिए देह बना लेगा, बिल्ली बना लिया, बड़ा बात क्या है, वहीं पर खत्म कर दिए। लेकिन यह समझना चाहिए कि मानुषम देह आ स्थितम, वे स्थित हुए हैं मनुष्य देह में। मानुषम देह का अर्थ होता है जो देखने में मनुष्य जैसा लगता है लेकिन मनुष्य का देह है नहीं, भगवान का देह भी दिव्य है, अप्राकृत देह है। इसी अप्राकृत देह को जब वसुदेव जी देखे, देवकी देखी, तो विस्मितम शब्द आया हुआ है, वे लोग विस्मित हो गए इन्हीं देहों को देख करके। तो कहें क्यों आते हैं भगवान, ने लीला क्यों करते हैं, रासलीला चाहे सब क्यों करते हैं। देखो ये जो श्लोक है भागवतम का 33वां अध्याय का, ये भगवान के लीला परक है, भगवान लीला क्यों करते हैं, कारण क्या है, जो कि श्लोक संख्या 62 में आया हुआ है, इसी का कम से कम। तो लीला क्यों करते हैं, कहते हैं भजते तादृशं कृणा, भगवान मनुष्य का देह लेकर के मनुष्यवत काम करते हैं। भजते मतलब काम करते हैं, कैसे, तादृशी ठीक वैसे हैं, जैसे छोटा बच्चा रोता है वो भी रोते हैं, हम लोग चोरी करते हैं भगवान में चोरी करते हैं, उनसे ही सब गुण आया हुआ है हम लोग में। मानवीय कार्य किए भगवान, भजते तादृशी किरणा, लेकिन वह किरणा जो है वो मानवीय नहीं है, वो दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। और वैसा दिव्य लीला सुन करके या श्रुतवा तत्परो भवे, वह लीला सुनने के बाद भी हम लोग जाएंगे बैक होम, बैक टू गॉड है। यहां पर किसी का लीला सुनो नरक में जाओगे, आसाराम बाबू का लीला सुनो यहीं पर रह जाओगे, कृष्ण का लीला सुनोगे गो बैक होम, बैक टू गॉड है। तो कृष्ण का ही लीला सुनना चाहिए। ये जो जितने गुरु लोग हैं अपने को भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो लोग गुरु नहीं हो गुरु हैं, गुरु मतलब पशु। लीला सुनना है तो भगवान का लीला सुने, और वह लीला हमें कहां ले जाएगा, भगवान के धाम ले जाएगा। तो भगवान का यह अनुग्रह है, अनुग्रहाय भक्तानाम, भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए इस प्रकार का लीला करते हैं। कितना है भगवान का काजलेश मर्सी, भगवान कितने अपने भक्तों से आसक्त हैं, भगवान कितने अपने भक्तों को प्यार करते हैं, समान मनुष्य को भी अनुग्रहाय भूतानाम, और यहां पर कहा अनुग्रहाय भक्तानाम, अंतर इतना ही है। तो सबका अधिकार है भगवान का भजन करने का, भगवान का लीला कथा सुनने का। राधाष्टमी अभी बीत चुका, एक मैं लीला बताऊंगा भगवान का, ठीक है, जो भगवान का अनुग्रह है, जिसको सुन करके भक्त लोग, और यह लीला सुनना कैसा है, कहते हैं सुपुण्यम है, सुपुण्यम। बंशीधर गोस्वामी कहते हैं तीर्थदानम तपोजोगो न सम जसा हरे, संसार में प्रायः पुण्य समझा जाता है तीर्थ स्थान में जाना, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान में जाओ दान करो ये पुण्य काम है, तपस्या करो, योग ध्यान करो, ये सब पुण्य है, सही में पुण्य है। लेकिन हमारे कर्म वासना को खत्म करने के लिए ये पुण्य काम नहीं करेंगे। क्या करेगा, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघाधुनमंती कृष्णेय, यहां आए भास्कर 6 कैंटो में है, तो ये जो पुण्य है वो ठीक है, लेकिन न सम जससाम हरे, ये पुण्य है लेकिन भगवान हरि का जो जस है उसका कृति, उसका कीर्तन श्रवण, वो भी पुण्य कहा गया है, सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये भी पुण्य है। सुपुण्यम, पुण्य ही नहीं है, कैसा है? सुपुण्यम। और यह जस ये भगवान का है, वो सुपुण्य है, और इसीलिए भगवान इसका विस्तार किए हैं, वेतनो इसका विस्तार किए हैं भगवान आकर के। क्योंकि इसका, इस पुण्य का, सुपुण्य का जस कीर्तन कर कर करके लोग दुख शोक और अज्ञान से परे हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। तो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, माघ मास का महीना था, माघ समझते हो ना, किसे कहते हैं माघ? रदास है? अरे माघ का जन्मा बच्चा बाघ होता है, ठंडी का दिन, जनवरी का महीना। कितने लोग जनवरी में जन्म लिए हैं? तो माघ में जन्मे लोग बाघ होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। एनीवे, तो माघ का महीना था, मकर संक्रांति के समय से पहले का। ब्रज में गोपियां प्रत्येक दिन जाती थी यमुना किनारे स्नान करने के लिए। एक तप है, परिवार संपन्न रहे, पति दीर्घायु बने, इत्यादि इत्यादि। सुबह सुबह चली जाती थी। अब राधा रानी की जो ननद थी, मैं बताया था पिछले दिन, उसका नाम था कुटिला। कुटिला का मतलब पॉलिटिशियन, जो कूटनीति जानता हो। तो उसके मन में हमेशा शंका बना रहता था कि मेरी भाभी जाती है और नंद का छोरा आते हैं, ये लोग मजा मारते हैं जमुना किनारे। तो एक दिन वो अभी आई, तो वो नंद गांव होकर के आई कि कृष्ण अभी क्या कर रहा है। तो पूछते हुए आई तो पता चला कि कृष्ण भी स्नान करने गए हैं। तो समझिए, बस बस अब तो हो गया, मैं आज पकड़ लूंगी इन लोगों को, ये व्रत करने का केवल बहाना है, ये व्रत व्रत थोड़े है, ये यमुना किनारे व्रत करने थोड़े हमारी भाभी और ये सब गोपियां जाती हैं, कृष्ण जाते हैं। तो वह आ रही थी, बड़ी जल्दी जल्दी आ रही थी। उस समय भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ में निकुंज में विहार कर रहे थे। तब तक से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी आई, देखी कि कुटिला बड़ा जल्दी जल्दी उधर चली आ रही है। तो वृंदावनेश्वरी जल्दी गई और ललिता विशाखा सब निकुंज के बाहर थी। तो उन लोगों ने कहा, बड़ा गड़बड़ होने वाला है, अभी मैं देखा कि कुटिला आ रही उधर से। कथा को संक्षिप्त में कहूंगा, कुटिला उधर से आ रही है। तब ललिता विशाखा सोचे क्या करे, तो निकुंज जो रतकेल सिद्धई में ये लोग प्रवेश किए हैं, क्या करें, तब कुटिला आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अंततः ललिता विशाखा जी को यह बात कहना ही पड़ा। तो जब श्रीमती राधा रानी जब सुनी कि कुटिला आ रही है, तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी घबरा गई राधा रानी कि अब क्या होगा, ये तो बदमाश है। कृष्ण का चिंता काहे करती हो, आप लोग कुछ मत करो, बाहर निकलो, देखो मैं जो करना है मैं करूंगा, आप यहां से बाहर निकलो। तो वहां से वे बाहर निकली और वह निकुंज का दरवाजा उन लोगों ने बंद कर दिया और बाहर श्रीमती राधा रानी बैठी हुई थी और चारों तरफ से गोपियां उनको घेरी हुई थी। ललिता विशाखा कहते दूसरे कुंज में। तब तक से कृष्ण वहां से निकले और अभिमन्यु गोप का वेश धारण कर लिए। और जा रहे थे, उधर ही जा रहे थे जैसे कुटला आ रही थी। तो कुटला को देख करे बन तुम कहाँ इतना जल्दी जल्दी जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कहा भैया मत पूछो, आज मैं रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तो क्या हुआ? तो कहा कि ये लोग जो प्रत्येक दिन माघ महीना में स्नान करने आती हैं, ये स्नान उस्नान कुछ नहीं करने आती हैं, ये कुछ यहाँ पर मैं आज पता लगाने के लिए चली हूँ। नंदगांव गई तो पता चला कि नंद का छोरा भी वहां से गायब है, स्नान करने में भी आया हुआ है। तो अब मैं पकड़ ली हूं इन लोगों को, लेकिन तुम यहां पर क्या कर रहे भैया? तो कह रहे क्या करे, वो नया नया बैल खरीदा था ना तो कहीं बाहर भाग गया है, तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते इधर आया था। तो बहन तू तो आज परिवार का लाज बचा रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, ठीक है तू जल्दी करो, ऐसा करो मैं इस कुंज में छिप जाता हूं और तुम जाओ, और जब तुम पकड़ोगी देखना कि जब नंद का छोरा उधर है तो आकर मुझे बताना। तो अब कुटिला पहुंची चली, बड़ा जोश में पहले तो आ ही रही थी, अब भाई भी मिल गया, उसे क्या पता कि ये भी कृष्ण ही है। तो गई, जाते जाते गई तो देखी कि राधा रानी बैठी हुई है, चारों तरफ सब गोपियां बैठी हुई हैं। तो ललिता सखी ने पूछा कि हम लोगों का अहो भाग्य कि आज कुटिला बहन भी सुबह सुबह व्रत में भाग लेने आई हैं। वो चिड़ाई, वो लोग उनको कुटिला को चिड़ाई। तो वहां पर बहुत सुंदर संवाद हुआ कुटिला और ललिता इत्यादि से। कुटिला ने कहा कि मैं सब जानती हूं तू लोग यहां पर क्या कर रही हो, मुझे सब खबर है, ये बताओ इस निकुंज में कौन है, नंद का छोरा इसी में है ना, बोलो। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग आए हैं यहां व्रत करने के लिए, स्नान करने के लिए, हम लोग बात करें स्नान करेंगे। कहा नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम लोग चलो और उसमें प्रवेश करो, मैं रेड हैंडेड उसे पकड़ना चाहती हूं तुम्हारे सामने। ललिता ने कहा कि देखो ये किसी देवताओं का निकुंज है, वो लोग अपना दरवाजा बंद कर दिए हैं, हम लोग बड़ों पवित्र स्त्रियां हैं ब्रज की, हम लोग कुलीन स्त्रियां हैं, दूसरे के घर में देखना ताकना हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप जाकर के देखो। कुटिला को खूब इंसल्ट लोग कर रहे थे कि आप जाकर के देखो कि वहां पर क्या हो रहा है, हम क्यों जाएंगे। कुटिला कहा तुम नहीं चलोगी? कहा कि नहीं, हमारा ये धर्म नहीं है, धर्म के विरुद्ध है, वो देवताओं का वो गृह है, हम कैसे दूसरे घर में जा सकते हैं। कुटिला तो बड़े पावर में थी, 33,000 वोल्ट लगा हुआ था उसमें, वो आई और पैर से धक्का मारी, दरवाजा निकुंज का खुल गया, तो ऐसे लगाया गया था गिर गया। तो उसने देखा कि कृष्ण का माला और श्रीमती राधिका का नुपुर कर कमर में बंधने वाला और नुपुर था, तो पहचान गई, अच्छा अब मुझे प्रमाण मिल गया, कृष्ण तो नहीं मिले लेकिन ये प्रमाण मिल गया। तो नुपुर और कमरबंद उसे उठाई, माला उठाई, अब मुझे प्रमाण मिल गया, तुम लोग चलो घर, तुम क्या करती हो यहां पर भाभी आकर के, मैं सब अब जान गई हूं और मैं सब लोगों को बताने वाली हूं, पंचायती होगी। तो राधा रानी से रहा नहीं गया, राधा रानी कही कि आप शंका के बीमारी से हमेशा जलती रहती हो, आपके में बहुत शंका का बीमारी है, उचित नहीं है। आखिर देखो पहले ननद और भाभी का जो संबंध था अलग प्रकार का था, भाभी का ननद आखिर घर वाली थी, पति घर वाली थी, उतना नहीं बोल सकती थी। तो राधा रानी बड़े सम्मान के साथ में बोली लेकिन कि आप क्या ये कर रही, इसे क्या होने वाला है, लेकर जाना है लेकर जाओ, जिसको बताना बता दो, हमें कोई डर नहीं है, बता दो, हाँ हमारा नुपुर है, हमारा एक ए है, क्या बता दो जो कहना है करो। और कहिए माला है किसका है? तो राधा रानी कहता वो तो आप बताओगे ना माला किसका है, मैं थोड़े बताऊंगी, जा बताओ जिसको बताना है। तो वो लोग बहुत चिड़ाई कुटिला को, तो तुम आग बबूला हो गई और बड़े बेग से वहां से निकली और उस कुंज में गई जहां पर कृष्ण छिपे हुए थे अभिमन्यु गोप के वेश में। तो कही कि भैया आज मैं रेड हैंड पकड़ी हूं, देखो ये जो माला है ये नंदनंदन श्याम सुंदर का है और यह जो नुपुर और करधनी है वो भाभी का है। तो आज तो रंगे हाथे लोग पकड़े गए हैं। तो अभिमन्यु कृष्ण जो अभिमन्यु का रूप धारण करके, बहन जल्दी लाओ मुझे दे दो ये सब, ये दे दो। कहा क्यों? कहा मैं यहां से, मैं जानता हूं कि बैल हमारा महंगा है, बैल ढूंढना हमारा धर्म है, लेकिन घर का इज्जत बचाना उससे भी बड़ा धर्म हमारा है, इसलिए मैं बैल ढूंढने में नहीं जाऊंगा, छोड़ दो बैल देखा जाए क्या होगा, तुम ये दो हमको, अभी मैं सीधे यहां से मथुरा जा रहा हूं और महाराज कंस के पास जाकर के बतलाऊंगा। लेकिन बहन बड़ी सावधानी से एक काम करना पड़ेगा, अपने घर का इज्जत पब्लिक में उछालना अच्छा नहीं होता है। राधा गलत कर रही है मैं जानता हूं। अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये लेकर के गोवर्धन मल के पास जाऊंगा जिनकी पत्नी है चंद्रावली, और गोवर्धन मल को भी हमारे समान ही परेशानी है, उनकी पत्नी चंद्रावली भाग जाती है और कृष्ण वहां भी लंपटगिरी करता है, तो मैं अपना ईत नहीं उछालूंगा, मैं इसको ले जा रहा हूं गोवर्धन मल को चढ़ाऊंगा और उसको मथुरा जाने के लिए कहूंगा और उसके साथ में गवाही देने मैं भी मथुरा जाऊंगा। और फिर महाराज कंस के यहां से 100 पुलिस वाले हम लेकर के आएंगे, 10-5 घोड़े वाले लेकर के आएंगे और आकर के नंद और नंद के छोरे को अरेस्ट कराएंगे और फिर महाराज कंस इसका ये देंगे। ठीक है, अब कुटिला ने दे दिया जो उसके पास सामान प्राप्त हुआ था, दे दिया। अब उधर कुटिला को कहा है कि अब तुम चुपचाप सीधे जाओ, केवल मां से बात कहना और किसी मत कहना, मां से बता देना क्या हो रहा है और मैं फिर आऊंगा, मथुरा से आऊंगा। उधर कुटिला चली गई, भगवान इधर फिर आए, फिर गोपियां थी वहां पर, और उसके बाद में भगवान ने कहा कि देखो अब आप लोग जल्दी स्नान इत्यादि करके घर जाओ। तो गोपियां आ गई, कुछ समय के बाद करीब दोपहर होने वाला था, तो वही कृष्ण अभिमन्यु का जो रूप धारण किए थे कृष्ण रूपी अभिमन्यु घर पर आया और बुलाया, माँ को बुलाया, बहन को बुलाया, कहा सुनो इधर जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, अभी मैं मथुरा से आ रहा हूं, पानी उन्हें पिलाओ, बहुत थक गया हूं, थोड़ा पानी उन्हें पिलाओ, देखो अभी महाराज से हम सब बात कर दिए हैं, अब कुछ समय के बाद महाराज के सैनिक आते होंगे, आएंगे वो लोग नंद और बस नंद और उसके छोरे को अरेस्ट करके अब ले जाएंगे। ऐसा करो कि देखो मैं जा रहा हूं, कहीं राधा सुन लेगी कि पुलिस वाले आ रहे हैं, सैनिक आ रही है नंद के छोरे को अरेस्ट करने के लिए, तो घर से वो भागने का प्रयास करेगी, तो मैं उस कमरे में जा रहा हूं जहां पर राधा है और तुम लोग बाहर से दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, एक बात। दूसरा बात, देखो वो जो कृष्ण है ना बड़ा चतुर चलाक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा रूप धारण करके आ जाए, ऐसा भी वो कर सकता है राधा को भगाने के लिए यहां से। तो बहन और मां सावधान रहना, तुम लोग वो आ सकता है, सावधान रहना। तो उन लोगों ने वैसा ही किया, कृष्ण रूपी अभिमन्यु को जहां पर श्रीमती राधिका थी उनके साथ में वहां पर रख करके दरवाजे का कड़ी लगा दिया और इधर जटिला और कुटिला तैयार हो गए। मिर्ची का पाउडर लेकर के, पत्थर लेकर के नीचे तले कृष्ण और श्रीमती राधिका थे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ये लोग बैठ गए प्रतीक्षा करने के लिए, अब कृष्ण आता होगा। तो बेचारा असली अहिमनु अब आया, दोपहर का समय था, अब वो आया, अब आया, अब देखी कुटिला तो लगी गाली देने, खूब भर पेट पानी पी पी कर गाली दी, है ना, क्या क्या कही, जो कहना था सब कह दी, उतना ही नहीं पत्थर से लगी ऊपर से मारने और मिर्चा का पाउडर फेंकी। तो बेचारा ये मनुष्य सोचता है कि हमारी बहन पागल हो गई है और माँ भी पागल हो गई है, वो कितना प्रयास कर रहा है कहने का कि अरे मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन काहे को, इन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब कृष्ण जिनको फूंक दें, जिनका कान अब कौन रह सकता है ब्रज में, तो उन लोगों का कान फूंका गया था कृष्ण के द्वारा, काहे को रहने जाए वे लोग। तो गया बेचारा ओझा लाने के लिए, ओझा लाने के लिए गया कि ये लोग पागल हो गए हैं। तब अब वो जब ओझा लाने के लिए गया तब कृष्ण दरवाजा खटखटाए, तो कुटिला जल्दी नहीं, कुटिला पहले ही जाकर दरवाजा खोली और कही कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कहते हो, कृष्ण आया था और ठीक आपका ही रूप धारण करके आया था, है वो तो अच्छा आपने पहले बता दिया, नहीं तो हम लोग तो चक्कर में पड़ जाते। तो क्या आप किया तुम लोग, भगा दिया उसको, कह लो तो भगा दिया तुम लोग, बहुत गलत काम किया, अरे उसको बांध कर रखना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था तुम लोगों को, ठीक है अब मैं अब जा रहा हूं, देख रहा हूं वो कहां पर है। कृष्ण वहां से निकले, धीरे से निकल पड़े, पतली गली से निकल पड़े वहां से। तो ये एक कथा है। तो इस प्रकार से अनेक कथाएं हैं कृष्ण की, और ये किसके लिए है, अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान इस प्रकार का लीला करते, भक्त भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया है कि भगवान का जो ये जस है सुपुण्य जसा, ये सुपुण्य जस है वह जिसका, इसको परम पवित्र जस का विस्तार किया, जिसका गान कर करके श्रवण कर करके दुख शोक और अज्ञानता से हम लोग नष्ट हो जाएंगे, वो सब नष्ट हो जाएगी। तो हम लोगों में दुख यदि है, हम लोगों किसी प्रकार का शोक है, अज्ञानता तो है सर्टेनली, तो इन सब से जिसको परे होना है उसे क्या चाहिए, भगवान के इन पुण्यमय लीलाओं का श्रवण। श्रीमती राधा रानी स्वयं इस श्रवण का महिमा बताती है गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, और यहां पर आया हुआ है सुपुण्यम, जसकारी है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो संसार में जो दुख है तप्त जीवनम, उसके लिए अमृत का काम करता है यह कथा। अब इसके बाद आज का जो श्लोक है, कहते हैं यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे, यस्मिन वह कथा जो किस लिए आया हुआ है, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, वह कथा शुद्ध करती है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिं भक्ति अनुक्रमिष्यति कर्ण सताम प्रसंगा महावीर्य सताम प्रसंगा हाँ मंबीर्य संविद भवंति हृत कर्ण हृदय के लिए और कान के लिए ये रसायन काम करता है, दवा का काम करता है, दवा का काम है रोग को ठीक करना। कान शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, जब हृदय शुद्ध होता है तो लोग संत कहलाते हैं। मैं कहता हूं साधु और संत में अंतर है, जिसका आचरण शुद्ध हो उसे साधु कहते हैं और जिसका हृदय शुद्ध हो उसे संत कहते हैं। तो यहां पर संत का बात आया हुआ है, यस्मिन सत कर्ण पीयूषे, संतों के कान में जब यह कथा जाती है, सत्कर्ण पीयूषे, संतों के कारण कान में जब यह दिव्य कथा जाती है तो वह कथा कहती है यशस तीर्थवरे कृतम, तीर्थों में बार बार यदि स्नान करें तब पवित्र हो सकते हैं। गंगा र परस हैल पाश्चात पामर, दर्शन पवित्र कर ये तुम्हार गुण। अरे पवित्रता करने के लिए भगवान का नाम इनफ है, भगवान कथा की जरूरत नहीं है। पवित्र ही जब होना है, जब कान को पवित्र करना है, हृदय को पवित्र करना है, अरे पवित्र करना तो ये तो क्या बोलते हैं उसे, बाई प्रोडक्ट है। कथा सुनने का बाई प्रोडक्ट है ये पवित्रता। नाम में वह नाम की महिमा है, जो नाम पवित्र करता है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तवा स्मरित पुंडिकाक्षर शुचि, पवित्र तो नाम भी कर सकता है, तो फिर कथा की जरूरत क्या है। कथा पवित्र तो करता ही है, साथ साथ आह्लाद का भी जन्म देता है, आह्लाद का जन्म होता है। तो उसी बात को श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, यस्मिन सताम कर्ण पीयूषे यशो रूपे तीर्थवरे श्रोत्रम एवं अंजलिम पानम साधनम यस्य सकृत अपि वस्पृश्य याचमान मात्रम कृतवा त सौंदर्य कृष्णचित्त कर्म वासना धुनोते। क्या होता है इस कथा को सुनने से, कथा सुनते हैं तो क्या होता है आनंद की। तो यहां पर आए यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे यश, जस की प्राप्ति कराता है। जस क्या है, जस क्या है, तो जस है कि तीर्थ जितने भी पवित्र करने वाले वस्तुएं हैं, यश तीर्थवरे, तीर्थों में श्रेष्ठ है, तीर्थवरे तीर्थों में वर है, वर मतलब श्रेष्ठ। सकृत एक बार भी वह कोई कथा सुन लेता है तो इतना ये पावरफुल कथा है। गंगा जी में बार बार स्नान करो तो पवित्र हो सकते, गंगा र परस हैल पाश्चात, बार बार स्नान करने से पवित्र हो सकते हैं, लेकिन एक बार भी कोई भगवान का नाम सुनता है, भगवान का कथा सुनता है, क्योंकि यह तीर्थ बड़ा है, तीर्थों में श्रेष्ठ है। सुनने की पद्धति क्या है वह बता दे, श्रोतांजलि उपस्पृश्य, जो कान है इसको अंजलि मतलब पानी पीना होता है, तो आजकल तो ग्लास में पीते हैं, पहले कहाँ हम लोग चंपा का लय भाई पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, झरना में पानी गिर रहा है पी लेते हैं। ये जो है ना ये पक्का ग्लास है, एक ही मुंह में जाता है, एक मुंह में जाता है ग्लास, एक ग्लास एक ही मुंह में जाता है। तो हरि कथा सुनने के लिए जैसे पान करने पानी के लिए अंजलि, वैसे ही अब अंजलि में क्या करना है, देखना छेद न रहे, छेद रह गया पानी गिर जाता है, तो दबा करके रखना, पानी गिरने ना पावे। तो वैसे ही कथा सावधानी से सुनो, और सावधानी सुनोगे तो और कुछ दिमाग में आएगा, कथा नहीं आएगी, अंजलि में छेद हो जाएगा ना। तो इसलिए बहुत सुंदर बात यहां पर कहते हैं, श्रोतांजलि उपस्पृश्य, उपस्पृश्य अस्पृश्य मतलब आचमन, जैसे कोई काम करना तो आचमन करते हैं ना, तो आचमन कर करके कान को शुद्ध कर करके और कथा को सुने तो इसे क्या होगा, धुने ते कर्म वासना, हमारे कर्म करने की जो वासना है, इच्छा है, उसको यह कथा धुलाई कर देता है, उसका रह नहीं जाता है। जब तक से कर्म की वासना नहीं होगी हम कर्म नहीं करेंगे। मैं उदाहरण दिया था लास्ट टाइम कि जब भूख नहीं होगी तो कितना भी अच्छा भोजन हो नहीं करेंगे, भूख होना जरूरी है। तो कर्म करने से पहले कर्म की वासना होगी, जब कर्म की वासना होती है तभी हम कर्म करते हैं, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। प्रभुपाद जी कहते हैं ड्राई स्टूल और वेट स्टूल बोथ आर स्टूल, हीरा चोर या खीरा चोर दोनों चोर हैं। तो वासना खत्म करनी है जिसको तो उसे चाहिए हरि कथा सुने, स्पेशली कलयुग में है, कलौ जनिष्यमाणा नाम, कलयुग के लोगों के लिए है, हमेशा के लिए है। और यह कथा किसको सुननी चाहिए प्रश्न उठ सकता है, कृतमानम यशो यस्य सकृदा अकर्ण रोचनम सत्संगान मुक्त दुस्संगो ही तू अति उत्साह बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अति उत्साह है, बड़े उत्साह के साथ में कथा सुनना चाहते हैं, लेजीनेस नहीं होती है कथा सुनने में, कि टेम्पल कमांडर पीछे पड़े चलो कथा में चलना है, वो तो मूर्ख लोग हैं। कीर्तमानम जसो यस्य सकृदात अकरण रोचनम, जब भगवान का कथा भगवान का लीला जस जब कान में जाता है तो कर्ण रोचनम कान को बड़ा आनंद देता है। और ये कहा सत्संगान मुक्त सुसंगो, सत्संग करेंगे तो दुसंग जो है खराब जो संग है उससे हम मुक्त हो जाएंगे, फिर केवल साधु संग करेंगे। और ही अति उत्साह बुधा, और बड़ा उत्साह उत्पन्न होता है कथा सुनने के लिए, ये सब कथा की महिमा है। इसीलिए सब लोग कथा सुनते हैं, भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन किया गया है कि जो शुद्ध भक्त लोग हैं वो भी कथा सुनते हैं, ये नहीं समझते हैं कि मैं तो सीनियर डिवोटी हूं मुझे कथा सुनने की जरूरत है, मैं सब जानता हूं। जो कथा सुनता है वो नम्र हो जाता है, वो सदा मैं तो मूर्ख हूं मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कथा के विषय में, कहते हैं निवृत्त उपगीयमानात् भौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवातात् पुमान विरज्जेत बिना पशुघ्नात्। अरे कौन कथा नहीं सुनना चाहेगा बिना पशुघ्नात्, जो आत्मघाती है, जो आत्महत्या कर रहा है, जो कसाई है, पशुघ्नात् पशुओं का हनन करने वाला या अपना हनन करने वाला, ये मानव जन्म मिला हुआ है हरि कथा सुनने के लिए। मानुष जन्मा पाइया रहा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया विषखायनु, ये जान सुनकर लोग विष खा रहे हैं जो कथा नहीं सुनते हैं। शुद्ध भक्त भी सुनते हैं कि निवृत्त तरसई, जो निवृत्त हो गए हैं तृष्णा से, जिनमें संसार की तृष्णा नेम फेम ग्लोरीज नहीं रह चुकी है, वो लोग भी कथा सुन निवृत्त तरसई उपगीय मानात, उपगीय बड़े चाव से गाते हैं उपगीय मानात। क्यों, भव औषधि, ये भव औषधि है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का यही एक दवा है, अन्य छह औषधि माया, यह औषधि है, औषधि। एक औषधि काम क्या है, रोग को दूर करना। तो ये रोग को दूर करता है, भव रोग को दूर करता है। और मनो अभिरामात, जो मन भटक रहा है कि ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, वो सब खत्म हो जाता है। मन को बड़ा अच्छा लगता, अभिरामात, आनंददायक है। कहते कह उत्तम श्लोक, और परिचित महाराज कहते हैं ऐसा कौन मूर्ख होगा, कह वो कौन होगा, कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात, कौन ऐसा मूर्ख हो जाएगा भगवान उत्तम श्लोक का गुणानुवाद नहीं सुनना चाहेगा। तो माना सुखदेव जी कहते हैं हाँ कुछ लोग हैं जो सुनना नहीं चाहेंगे, तो परिचित उनको टाइटल देते हैं, ऑनररी डिग्री देते हैं। कहते हैं कौन है, पुमान विरज्जित बिना पशुगुना, तो कसाई लोग हैं, वो कसाई हैं जो कथा नहीं सुनना चाहेंगे। तो समराई दिस वर्स, इस श्लोक में, आज का जो श्लोक है इसमें कहा गया है, अस्मिन भगवान की ये जो लीला है, लीला कथा, यस्मिन सत्कर्ण पीयूषे, शुद्ध कान से कोई पिए। तो कोई प्रश्न कर, अशुद्ध कान से पीते हैं उनका क्या होगा, जो अशुद्ध कान से पीते हैं उनको फायदा होता है, ऐसा बात नहीं। कान साफ होता है, हृदय साफ होता है, जैसा भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगाम वीरज संविदो भवंत हृत कर्ण असायनम सता, शुद्ध करता है हृत को और कर्ण को। और जिनका शुद्ध हो गया है वो पग पग पर रसास्वादन करते हैं, जैसे भगवान चेतन महाप्रभु, स्वादु स्वादु पदे पदे, पग पग पर स्वाद का आस्वादन करते हैं वे लोग जो सत्कर्ण वाले हैं, जो संत लोग हैं, जिनका कान शुद्ध हो गया, पी उसे से पान करते हैं, कान से पान करते हैं। जसस तीर्थ वरे सकृत, इसे सीखना चाहिए कि बहुत से भक्त लोग हैं जो तीर्थस्थली जाना चाहते हैं, कथा नहीं सुनेंगे तीर्थस्थली जाएंगे। अरे तीर्थों में भी सर्वश्रेष्ठ है कथा सुनना, तीर्थ भरे, तीर्थों में श्रेष्ठ है भगवान के जस का गुणानुवाद सुनना, तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसलिए सब प्रकार से हमें सुनना चाहिए जितना हो सके। कैसे सुनना चाहिए, मैंने बताया कि अंजलि में छेद नहीं होना चाहिए, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ में, श्रोतांजलि उपस्पृहस, श्रोतांजलि उपस्, श्रोतांजलि कान के में वो जाए शुद्धता पूर्वक, तो धुनोति कर्म वासना, सब प्रकार के, हालांकि ये कर्म वासना ये सत्पुरुषों के लिए नहीं है, ये सामान्य लोगों के लिए है, अनुग्रहाय भूतानाम, प्राणियों के लिए। ये कथा भक्तों के लिए भी लाभदायक है और संसारिक लोगों के लिए। संसारिक लोगों क्या होता है, धुनोते कर्म वासना, जो कर्म करने की जो इच्छा है वह उसको धुन डालता है, धो डालता है, खत्म कर देता है हरि कथा। तो सर्वतो भावेन, यहाँ पर भगवत कथा का महिमा बताया गया है, भगवान के लीलाओं का वर्णन किया गया है, यहाँ लीलाओं का महिमा बताया गया है। ये वास्तव में इंट्रोडक्शन है 10th कैंटो भागवतम का। ये जो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 50 से लेकर के आगे का जो श्लोक है 64 या 65 तक है, तो ये जो है इंट्रोडक्शन है 10th कैंटो भागवतम का। तो जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा, इन 8-10 श्लोकों को, उसको आसान होगा। 10th कैंटो अपने आप में आसान है, लेकिन फिर भी आसान होगा। तो इन श्लोकों को फिर लोग आप लोग पढ़ लेना, वहाँ से जहाँ पर भगवान आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, वहां से लेकर के अंत तक। और आज का जो श्लोक है भगवान के कथा का गुणगान किया गया है कि सबके लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? चेतन जीवन, यस, माइक माइक माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया साधु और संत के बारे में, तो उसी तरह साधु संत और वैष्णव, उनमें क्या गुण है जो समान है, जो क्या आदर्श गुण है जो उनको एक दूसरे से भिन्न तारते हैं, और उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है?
संत सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैष्णव तो, वैष्णव जो है वो साधु तो है ही ऑलरेडी, जो वैष्णव है साधु तो है ही, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साधुओं के जो गुण है, तितिक्षवा कारुणिका श्रुदम सर्वभूतानाम अजा सत्रव शांत साधव साधु भूषणम, ये सब लक्षण है साधु के। लेकिन संत का लक्षण है जिसका दिल साफ हो गया है, जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिसको गिरने का कोई चांस नहीं है। भरत जी उदाहरण के लिए बहुत आगे पहुंच गए थे, भाव भक्ति पहुंच गए, प्रेम से एक ही स्टेप नीचे थे, लेकिन फिर भी वासना रह गई थी हृदय में, जिसे चलते हुए आसक्त हो गए हरिणी से। तो उदाहरण दिया गया हम लोगों के लिए कि वासना कहां तक हम लोगों के पीछा करती है। संत बन जाओगे वासना खत्म हो जाएगी, संत की वासना नहीं। लेकिन वैष्णव सब हैं, वो भी वैष्णव है, जो संत है वो भी वैष्णव है, और जो साधु है वो भी वैष्णव है। ये मनुष्य, ब्राह्मण भी मनुष्य है, क्षत्रिय मनुष्य है, वैश्य मनुष्य है, और शूद्र मनुष्य है, मनुष्य है ना। लेकिन शूद्र और ब्राह्मण मनुष्य है, फिर भी उनका गुण अलग अलग है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हनुमान जी के पास माइक दीजिए।
हरे कृष्ण।
प्रश्न है कि कमेंट है?
प्रश्न है, प्रश्न पूछे, प्रश्न बोलता हूँ। हरे कृष्ण, ये जटिला और कुटिला क्यों कृष्ण के पीछे पड़े रहते थे? उन्हें कुछ घर में काम धंधा नहीं था क्या?
उनके पास बहुत काम था हनुमान जी। फिल्म आप देखे हो कि नहीं? कभी देखे हो ना? पहले उसमें मिलियन होना जरूरी है ना, शुरुआत शुरू बताएंगे, नहीं तो बिना विलियन के मजा नहीं आएगा फिल्म में। तो कुछ कृष्ण लीला में कुछ विलियन लोग थे, वो कृष्ण लीला में सहायक थे, बोल के वो सहायता करते थे राधा रानी को कृष्ण के पास जाने के लिए। अब देखिए यहां सहायता किए ना, अब कृष्ण को बंद कर दिया राधा रानी के हाथ में है, और अपने पारा दे रहे थे, ये सहायता ही हुआ ना। यस,
हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर ये जो शब्द,
हनुमान जी का प्रश्न बड़ा अच्छा होता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है।
जब हम ऐसे पढ़ते हैं धुनुते कर्म वासनम, तो
धुनेति कर्म वासनम, धुनुते कर्म वासनम,
सो इसका मतलब है कि सारे जो कर्म करने की जो इच्छा है, मटेरियल डिजायर्स ऐसे बताते, तो वो सब चली जाती है। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं या हम भी तो ऐसा प्रश्न आता है कि लोग पूछते हैं कि ये कर्म भी करते रहो भक्ति भी करते रहो, कर्म मिश्रित भक्ति करने की ज्यादा इच्छा होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये कर्म वासना जो आप खत्म कर दोगे क्योंकि तो साधु सन्यासी नहीं बनना है अपने को, तो हमें भक्ति भी करनी है और कर्म भी करते रहना है। तो आप लोग ये हरे कृष्ण आंदोलन वाले क्या सबको साधु सन्यासी बनाना चाहते हैं? तो इससे हम कैसे उनको हायर टेस्ट दे कि ये जो
जैसे कपड़ा गंदा हो गया है तो धोनोती मतलब धोना है, कपड़ा को फाड़ना नहीं है, जलाना नहीं है, उसको धोना है। तो हमारा आज चित्त जो है गंदा हो चुका है ना, इंद्रिय तृप्ति की वासना है, तो वासना को धो देता है, भोग भोगने की जो वासना है ना, काम को धोता है, निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम, वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि जो करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे। तो हम नहीं कहते हैं कर्म करना बंद कर दो, भगवान अर्जुन से कहे कि कर्मणे वा अधिकारस्ते, ये तुम्हारा अधिकार है, कैसे तुम छोड़ सकते हो, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन अब हमें चुनना है कि हम कौन कर्म करें, कर्म अकर्म और भी कर्म। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या करता है, हमको अकर्म के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देता है। बस जो भी करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने की वासना नहीं रह जाएगी। बस कृष्ण के इंद्रिय के लिए जरूर करेंगे, हम करोड़ों पुस्तक वितरण करेंगे, करोड़ों लोगों को भक्त बनाएंगे, ये वासना अच्छा है। प्यूरिफाइड डिजायर, कैन पुट दैट वे। यस, और कोई प्रश्न बोलो। रुको रुको, माइक आने दो। समझ में आया कि नहीं?
हाँ। आपने जो पवित्री का मंत्र बोला उसमें कुछ त्रुटियां थी।
किसमें?
जो आपने मंत्र बोला पवित्री का, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था।
तू अभी काशी से आया है ना जी। तो वहाँ डंडा और पंडा दो ही होते हैं।
हम पंडा नहीं ना।
हाँ, नहीं पंडा बनने का प्रयास कर रहे हो तुम।
पंडा तो दूसरा कोई होता है।
बोलो, ठीक है।
तो उसमें त्रुटि थी, इसलिए मैं बोला कि आपने जो बोला उसमें कुछ त्रुटियां थी।
हो सकता है, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। शायद तुम परफेक्ट होगा।
नहीं, मैं परफेक्ट नहीं, मैं आपने जो बोला उसमें सुनकर उस पर मैं बोला।
बोलो बोलो बोलो।
उसी श्लोक पर था, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि। आपने जो बोला उसमें तो कुछ त्रुटियां।
ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान माँ नहीं देखती है कि बेटा कौन भाषा बोलता है, बेटा बोलता तो है ना, माँ यही देखती है। बस वही बोलो। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न हो तो पूछो। करेक्शन होता अकेला में करना,
तो हमको क्या मालूम क्या अकेले में करना है।
हम भाई संस्कृत पढ़ने बनारस नहीं गए थे। तू बनारस छोड़कर आ गए, आप चाय बेच रहा है, क्या फायदा? ये पहले बनारस मंदिर में भगत था, भक्ति नहीं कर पाया तो वहां से भगा दिए थे, बम्बे आ गया। और कोई प्रश्न किसी को? भगवान तर्क से परे होते हैं। जहां तर्क होता है अच्छे लोग वहां नहीं रहना चाहते हैं, भगवान भी नहीं रहना चाहते हैं। तर्क से परे हो जाओ। भक्ति जो होती है ना, वो बालकों के लिए है। बालक तोतले बोलते हैं, माँ समझ जाती है। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, भगवान उनसे थोड़ा दूरी रहते हैं। जो भक्त होते हैं उनके पास भगवान दौड़ करके आ जाते हैं। तो भक्त बनने का प्रयास करो। यस हनुमान जी, हनुमान जी का परपोट अब होगा।
हरे कृष्णा। ऐसा है जो बाहर के दुनिया के जो लोग भौतिक बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, वो बार बार सुनने से थकावट होता है और कुछ लाभ होता है नहीं। लेकिन जो कृष्ण के विषय में कथा सुनते हैं, कई बार सुनने पर भी इसमें एक नया आनंद की अनुभूति होती है और कभी भी इसमें थकावट नहीं आती। हरे कृष्ण।
जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।